थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओ, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम आज का ये बाइबल अध्ययन आरंभ करें, सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता भाई बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों पहले इतिहास की पुस्तक, जो बाइबल की पुस्तक है, से अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद इसराइल की जनगणना करता है और परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है और परमेश्वर दाऊद को ही दंड चुनने की स्वतंत्रता देता है। तब दाऊद परमेश्वर के हाथ में पड़ना अधिक उचित समझता है। जनगणना के परिणाम स्वरूप संपूर्ण इसराइल पर दंड आया, महामारी का प्रकोप। तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके परिवार को दंड दे, प्रजा को नहीं। अब भविष्यद्वक्ता गाद उसे परमेश्वर का वचन सुनाता है कि वह ओरनान के खलिहान में वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और 21 अध्याय उसके 18 पद से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगहों पर आपके वचनों को सुनने के लिए रेडियो के समीप बैठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना प्रत्येक भाई बहनों के लिए है, इस समय जब हम आपके वचन को सुनते और सीखते हैं, हमारी विनती है प्रभु कि आप हरेक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवित वचन प्रत्येक के हृदयों में कार्य करने पाए। हम इस बात को भली भांति समझ सके कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके प्रेम को पहचान सकें, अपने उस बुरे कामों से हम नजात को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, बीमारी अवस्था में हैं, किसी न किसी रूप में तनाव में हैं। हाँ प्रभु, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, उनके जीवन में अपनी शांति प्रदान करें, आज के जीवित वचन के द्वारा उनसे भी बोले और बातचीत करें, ताकि वे आप पर और अधिक भरोसा रखने पाएं, इस बात को समझने पाएं कि आप उनसे भी प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, इस समय फिर से एक बार हम सबको, प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ पहले इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 पद को निकालें। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यह स्थान पर्वत मोरिया पर है और आज वहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। यही पुराने मंदिर का स्थान है। यहाँ स्पष्ट है कि यह स्थान दाऊद का नहीं, परमेश्वर का चुनाव है और दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप किया। हम पहले इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। मेरे मित्रों, ओरनान अपने खलिहान में गेहूं की दौनी कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन दोपहर वहां पर हवा चलती थी। दाऊद के युग में इस पवन की प्रतीक्षा की जाती थी। वे गेहूं को ऊपर उछालते थे जिससे भूसी उड़ जाती थी और गेहूं का दाना नीचे गिरता था। मेरे मित्रों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि पर्वत मोरिया ही वह स्थान है जहां अब्राहम ने इसहाक की बलि की वेदी बनाई थी। इसी पर्वतमाला के दूसरी ओर गुलगुथा है, खोपड़ी रूप पहाड़ी जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। यरूशलेम की दीवार इस पर्वत श्रृंखला तक जाती है, वह बहुत ऊंची है। गुलगुता भी उसी पर्वत श्रृंखला पर उसी ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला मुख्य मार्ग बनाने तक अटूट थी। परमेश्वर ने ओरनान का खलिहान चुना क्योंकि यह वही स्थान था जहां अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर भावी मंदिर के बलिदान और पाप मोचक परमेश्वर के मेमने की बलि को देख रहा था। हम पहले इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। मेरे मित्रों, ओरनान बड़ा उदार हृदय वाला था। उसने अपना खलिहान ही नहीं, गेहूं और लकड़ी तथा बैल भी निर्मोल देने की इच्छा व्यक्त की, मेल बलि और होम बलि चढ़ाने में काम आए। परंतु दाऊद ने क्या कहा, आप सुनिए। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय के 24 पद में दाऊद ने कहा, राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा, जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, दाऊद ने परमेश्वर के लिए कोई भी वस्तु सेंतमेंत अर्थात मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। दाऊद ने खलिहान की पूरी कीमत चुकाई। पहला इतिहास का पुस्तक 21 अध्याय उसके 26 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। मेरे प्रियो, दाऊद ने बलि चढ़ाई और स्वर्ग से अग्नि उतरी, अर्थात परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय के 27 पद में लिखा है, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रख ली। मेरे प्रियो, दंड रुक गया परंतु गुलगुता पर दंड ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला घोंपा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैंने भाले के घाव से होकर परमेश्वर के हृदय में प्रवेश किया। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। मेरे मित्रों, मैं आपको यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। दाऊद ने वाचा का संदूक उस स्थान पर रखा जहाँ मंदिर का भावी निर्माण होना था और उसने वहाँ बलि चढ़ाई। यही वह स्थान था जहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करने आता था। अब यह स्थान बलि चढ़ाने का स्थान बन गया था। देखिए, दाऊद तो समझ गया परंतु हमारी कलीसिया के सदस्य आज समझ नहीं पाते हैं। दाऊद ने यह वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाई। होम बलि मसीह के व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसके बाद उसने मेल बलि चढ़ाई जो मसीह हमारी शांति का प्रतीक है। मसीह ने क्रूस के लहू द्वारा शांति स्थापित की। मसीह यीशु हमारी शांति है। उसने हमारे लिए अपना लहू दया आसन पर छिड़का है। वह हमारा महान महायाजक है। वह स्वर्ग में चढ़ गया और स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच पाएं। मेरे मित्रों, दाऊद इस भेद को समझ गया था, अतः उसने परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। इसराइल में महामारी फैली हुई थी। दाऊद ने देखा था कि एक स्वर्गदूत यरूशलेम पर तलवार खींचे खड़ा है। दाऊद परमेश्वर को बलियां चढ़ाकर पुकारता है। उसने क्या याचना की? दया की। परमेश्वर दया का दाता है, प्रेम भरी दया का। परंतु क्या आप जानते हैं कि वह दया के कारण हमारा उद्धार नहीं करता है? परमेश्वर सहृदय तो नहीं हो सकता, वह भावनात्मक बूढ़ा सज्जन नहीं है। जी हाँ, दंड तो चुकाना ही होगा, पाप का निवारण तो करना ही होगा। परमेश्वर न्यायोचित भी है, इसलिए वह केवल अपनी दया के कारण हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा, अपने प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के मन में प्रेम है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमारा उद्धार कर दे। निश्चय ही वह हमसे प्रेम करता है और हम पर दया दर्शाता है, परंतु मात्र इसी से वह हमारा उद्धार नहीं करता है। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तो हमारे पाप का दंड चुकाना होगा या कीमत चुकानी होगी। परमेश्वर रात के अंधेरे में पीछे के द्वार से हमें चुपचाप स्वर्ग में नहीं ले लेता है। वह स्वर्ग के अवरोध गिरा नहीं सकता। पाप का निवारण आवश्यक है। वह आंख बंद करके हमारा उद्धार नहीं करेगा। हम उसके समक्ष पापी हैं। हर एक मनुष्य पापी है और दंड दिया ही जाएगा। इसी दंड को भोगने के लिए यीशु मसीह इस जगत में 2010 वर्ष पूर्व आया था। वह हमारा प्रायश्चित अर्थात हमारा दया आसन है। जी हाँ, उसी ने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं अध्याय 22 में, जहां पर हम देखेंगे मंदिर निर्माण की तैयारी एवं व्यवस्था। इस अध्याय से पहला इतिहास के अंत तक मंदिर निर्माण में दाऊद का जोश और साधन एवं सामान का भंडारण तथा उसकी व्यवस्था का उल्लेख है, जबकि परमेश्वर ने उसे निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर स्मरण कराना चाहता हूँ कि इतिहास की ये पुस्तकें परमेश्वर के दृष्टिकोण से इसराइल का इतिहास सुनाती है। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद के मन में मंदिर निर्माण की लालसा सबसे अधिक महत्व रखती थी। हम देख चुके हैं कि दाऊद ने आवासीय परियोजना आरंभ की थी, जिसके अधीन उसने यरूशलेम में आवास निर्माण किया था। यह एक महान शहरी विकास कार्यक्रम था, तथापि मंदिर निर्माण की योजना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। क्यों? मेरे प्रियो, जब तक कोई व्यक्ति या जाति विशेष परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं आ जाते, यह सब किसी काम का नहीं है। जब उसके साथ संबंधों में औचित्य स्थापित हो जाता है, तब शहरी विकास का कोई महत्व होता है। तभी जाकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यरूशलेम में वाचा का संदूक आ जाने के बाद आरंभ हुआ। मेरे मित्रों, वह किराना बांट रहा था। क्यों? क्योंकि आत्मिक कार्यकलाप पूरा हो गया था। आज हम शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, संचार माध्यम से इन बातों को ऐसे महत्व देते हैं कि यदि इनका समाधान हो जाए तो संसार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। मनुष्य संसार की समस्याओं के निवारण से बहुत दूर है, क्योंकि उसने मुख्य समस्या का समाधान नहीं किया है, परमेश्वर के साथ उचित संबंध। परिणाम स्वरूप शहरी विकास हो या गरीबी उन्मूलन, हर जगह पर भ्रष्टाचार है। मेरे मित्रों, मंदिर आत्मिकता और परमेश्वर के साथ सही संबंध का प्रतीक था। परमेश्वर की दृष्टि में यही एक महत्वपूर्ण बात थी जो दाऊद के राज्य में हुई थी। अपेक्षा इसके कि उसने कितने युद्ध जीते, उसकी नीतियां क्या थी, कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए आदि, जो आज हमारे युग में ध्यान का केंद्र है। इसे आधुनिक इतिहास में प्रासंगिक बनाना एक रोचक प्रयोग होगा। इंग्लैंड ने संपूर्ण विश्व पर राज्य किया और नैतिकता का पाठ सिखाया, परंतु उसके इतिहास में जो महत्वपूर्ण बात हुई वह न तो राजमहल में घटी और न ही संसद भवन में। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना तो वह थी जब जॉन वेस्ली ने प्रचार किया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि हम आज तक उसके प्रचार का लाभ उठा रहे हैं। कलीसिया ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, परंतु उसने प्रचार करना ना त्यागा। वह एल्डर्स गेट नामक स्थान में कब्रिस्तान की कब्रों पर खड़ा होकर प्रचार करता था। परिणाम स्वरूप ऐसी आत्मिक जागृति उत्पन्न हुई कि लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि जॉन वेस्ली ने इंग्लैंड के लिए जो किया वह कभी किसी अंग्रेज व्यक्ति ने नहीं किया। मेरे मित्रों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने वेस्ली को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझा, परंतु वह इंग्लैंड को क्रांति से बचाने में परमेश्वर का साधन था, और परमेश्वर ने उसे इस योग्य बनाया कि वह एक ऐसा अभियान आरंभ करे जिससे कि संपूर्ण संसार में सभ्यता समा जाए। यह कार्य इंग्लैंड से निकले प्रचारकों या परमेश्वर के दासों ने संपूर्ण संसार में किया। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि एक विरोधी मनुष्य भी स्वीकार करेगा कि वे दिन आज के ईश्वर रहित अभक्त समय से अधिक अच्छे थे। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद द्वारा किया गया मंदिर निर्माण के प्रति परिश्रम उसके अन्य किसी भी काम से अधिक महत्वपूर्ण था। हम पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इसराइल के लिए होमबलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इसराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिए। मेरे मित्रों, दाऊद का यह संकल्प था कि मंदिर ओरनान के खलिहान में ही बनाया जाए। तब हम आगे देखते हैं, पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने फाटक के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। मित्रों, हम देख चुके हैं कि सोर और सीदोन के राजा हिराम ने दाऊद को बहुत लकड़ी और पत्थर भेजे थे। तब हम आगे देखते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय के 5 पद में, और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। मित्रों, ध्यान दीजिए, वह कहता है कि मंदिर को तेजोमय होना है, यह परमेश्वर के दृष्टिकोण से है। दाऊद ने मंदिर निर्माण के लिए तैयारियों में कभी कमी नहीं छोड़ी। वह जानता था कि सुलेमान अभी अनुभवहीन एक युवक है और मंदिर को वैभव से पूर्ण होना था। यही एक कारण है कि मैं मंदिर को दाऊद का मंदिर कहता हूँ। पहला इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 6 से 8 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद ने युद्ध तो किए परंतु आक्रमण करने में पहल नहीं की थी। उसने तो केवल शत्रुओं के आक्रमण का उत्तर दिया था, परंतु परमेश्वर ने उसे एक खूनी मनुष्य कहा था। परमेश्वर युद्ध का परमेश्वर नहीं है, वह तो युद्धों के विरुद्ध रहता है। वह शांति चाहता है, उसका पुत्र शांति का राजकुमार कहलाता है, जो पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह युद्ध करने वाला मनुष्य था। हम पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इसराइल को शांति और चैन दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान शांति और विश्राम का पुरुष होगा, उसके युग में इसराइल में शांति स्थापित करेगा, परंतु हम देखेंगे कि इसराइल में शांति अधिक समय नहीं रही। एक मनुष्य था जो धर्म गुरुओं द्वारा त्यागा गया, परंतु फिर भी उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, परंतु मूल में ऐसा नहीं है, वह है शांति, विश्राम और ढाढ़स देना। सुलेमान इसमें सफल नहीं हुआ, परंतु महान दाऊद का महानतम पुत्र मनुष्य की आत्मा को शांति, विश्राम, ढाढ़स और निश्चिंतता प्रदान करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दयावान इसलिए है कि उसका पुत्र आपके लिए और मेरे लिए मर गया। क्या आप उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे? उसने स्वर्ग और नरक को हिला डाला कि आपके मन के द्वार में प्रवेश करे, और वह कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। वह चाहता है कि वह आपके जीवन में अपनी शांति और आनंद को प्रदान करे। वह चाहता है कि वह आपके साथ संगति करे। वह चाहता है कि आपके वह पापों को क्षमा करे। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, जिसने आपके लिए अपनी जान को दे दिया? उसने अपने बहुमूल्य और कीमती लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिया, आपके पापों की सजा अपने ऊपर में उठा ली, ताकि आप उस भयानक दर्द से, उस भयानक मृत्यु से बच जाएं। जी हाँ, आज वह आपके जीवन में आपको शांति और आनंद देना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जी हाँ, वह आपको जबरदस्ती नहीं करता है, वह आपसे, आपके सम्मुख में आकर के आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। यदि आप उसके लिए द्वार खोलेंगे तो वह अंदर प्रवेश करेगा। यदि आप अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलेंगे तो वह किसी दूसरे हृदय के द्वार को खटखटाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वह किसी को जबरदस्त नहीं करता है। मेरे मित्र, यदि आप अपने हृदय के द्वार खोलेंगे तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको शांति प्रदान करेंगे। आज आप उसके निकटता में आइए, अपने पापों को, अपने गलतियों को जिसे आपने किया है। हो सकता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके इष्ट और कुटुंब कोई नहीं जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपके सारे बातों को जानते हैं। आप उसे स्वीकार करें और उसे मान लें और निश्चय जाने कि वह आपके जीवन में शांति देंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दें और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीत वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हम जैसे पापी और तुच्छ लोगों से प्रेम किया। यद्यपि हमने अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयां की है, हमारे श्रोता भाई बहन ने बुराइयां की है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु आप सबसे प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि एक एक का जीवन बच जाए, एक एक के पापों को आपने अपने ऊपर में ले लिया, उन हाथों पर जिसे हम लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया आपने कीले ठुकवा लिए, अपने पाँव में कीले ठुकवा लिए, अपने सर पर कांटों का मुकुट को ग्रहण कर लिया ताकि हमारे बुरे सोच से हम बच जाए। पिता परमेश्वर, इस समय हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक भाई बहनों के पापों को क्षमा करें, उनके हृदयों में आप आ जाएं, जिन्होंने अपने हृदय के द्वार को खोले हैं उनके जीवन में आप शांति प्रदान करें ताकि हर एक जीवन आपको धन्य कहने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन में प्रवेश किया है, उन्हें आशीष दिया है, आज के अध्ययन को आपने आशीषित किया है, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। प्रभु के संगति और प्रेम में आप बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे
मेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।